الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست ہے اور الحمدللہ ہم سب پاکستانی آج اپنے ملک کا 68واں یوم آزادی منا رہے ہیں، یعنی اس مملکت خداداد پاکستان کو قائم ہوئے 68 سال ہو چکے ہیں. ہر سال ہم یہ یوم آزادی مناتے ہیں اور بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، بہت سے پاکستان بننے پر اعتراض کرتے ہیں اور بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بنا کیوں. حیرت کی بات یہ ہے کہ رہتے اس ملک میں ہیں، کھاتے اس ملک کے ہیں اور پھر اسی کے بننے پر اور اس کے وجود پر اور اس کے حصول پر اعتراضات کرتے ہیں. تو آئیے ہم ذرا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ملک کیوں وجود میں آیا. ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اس خطہ زمین کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر ہجرت کی اور اس خطہ زمین کو حاصل کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ تمام تفصیلات اس مختصر سی نشست میں ناممکن ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس ملک کے حصول کا مقصد کہ اس کو حاصل کیوں کیا گیا، وجہ کیا تھی، اس کو ہم بیان کریں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. یاد رکھیے کہ یہ ملک پاکستان صرف اور صرف اس لیے حاصل کیا گیا کہ ایک خطہ زمین ایسا ہو جہاں پر اسلام کی حکمرانی ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نفاذ کیا جائے، ان کے احکامات کی پابندی کی جائے. بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس خطہ زمین یا اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا جائے، صرف اور صرف یہ مقصد. صرف زمین حاصل کرنا مقصد نہیں، اسلام کی حکمرانی. اور ہماری اس بات کی تائید بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر سے بھی ہوتا ہے جو انہوں نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں کی تھی. اس کا ایک اقتباس آپ ملاحظہ فرمائیے. قائد اعظم نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربے کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزمائیں. دوسرے مقام پر آپ نے 9 نومبر 1939 کو عید الفطر کے دن بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، ہمارا پروگرام قرآن مجید میں موجود ہے. اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا. اب کوئی ملک بناتا ہے، کوئی تحریک چلاتا ہے تو اپنا پروگرام پیش کرتا ہے نا، ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو قائد اعظم نے واضح الفاظ میں فرمایا، مسلمانوں، ہمارا پروگرام قرآن کریم میں موجود ہے. ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں और कुरानी प्रोग्राम के होते हुए मुस्लिम लीग मुसलमानों के सामने कोई दूसरा प्रोग्राम पेश नहीं कर सकती। यानी ये बिल्कुल वाज़े अल्फाज हैं कि कुरान करीम के होते हुए मुस्लिम लीग आपके सामने कोई दूसरा प्रोग्राम पेश ही नहीं कर सकती। कुरान पेश कर दिया, यानी हम ऐसा मुल्क हासिल करेंगे जिसमें कुरान की हुक्मरानी, और इसका मतलब क्या है, जो कुरानी अहकाम हैं उस पर अमल किया जाए, ये मकसद इसका था। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी, 900 साल से जायद अरसे तक मुसलमानों ने बर्रे सगीर पर हुकूमत की, मुसलमान बादशाहों ने। आप पूरी तारीख एक मुगलिया दौर और उससे पहले ये सारी मौजूद है, और इल्जाम भी लगाते हैं कि जी इस्लाम तलवार से फैला, मुसलमान बादशाहों ने तलवार से इस्लाम फैलाया। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि किसी के गर्दन पर तलवार रखकर यह नहीं कहा जा सकता कलमा पढ़ो। अगर आप ऐसा करें, और आज के दौर में तो अगर पिस्तौल रख दें कनपट्टी पर कलमा पढ़ो पढ़ लेगा, लेकिन दिल से नहीं पढ़ेगा। कभी भी किसी को मजबूर करके किसी मजहब की तरफ रागिब नहीं किया जा सकता। ये कहना कि मुसलमान बादशाहों ने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया बिल्कुल गलत है। हां हम कहते हैं एक तलवार थी, वो अखलाक की तलवार थी, वो कुरान की तलवार थी, वो अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलवार थी, उसके जरिए इस्लाम फैला। वरना अगर ऐसा होता तो जब मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे तो एक भी हिंदू बाकी नहीं रहना चाहिए था, एक भी सिख बाकी नहीं रहना चाहिए था। लेकिन आप तारीख उठाकर देखें, मुगलिया दौर की तारीख, मुसलमानों की तारीख, हजारों हिंदू मौजूद हैं, सिख मौजूद हैं, दीगर मजाहिब के मानने वाले मौजूद हैं, और उनको तहफुज हासिल है, मुसलमानों ने तहफुज दिया है उनको। ऐसा नहीं किया कि तलवार रख दी इस्लाम कबूल करो, नहीं, इस्लाम फैला है मुसलमान सूफियों के दम कदम से। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने कदम रखा, 99 लाख हिंदुओं को मुसलमान कर, अपने इल्म से, अपनी रूहानियत से, अपनी करामात और अपनी कमालात से। बार सूरत, अंग्रेजों ने हुकूमत छीनी मुसलमानों से, इसलिए उनको सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों से था, हिंदुओं से नहीं था, सिखों से नहीं था। यही वजह थी कि उनके जुल्म और सितम का निशाना सबसे ज्यादा मुसलमान बने। हमने अपने बुजुर्गों से सुना, कभी कोई मुहिम चलाई जाती, कभी कोई हुक्म नाफिज कर दिया जाता, गाय को जिबा करना जो है ये गलत है, अगर किसी मुसलमान ने कर दिया उसको कत्ल कर दिया, उसके घर को आग लगा दी, मालो असबाब को लूट लिया। जरा जरा से मौके पर कोई ऐसा मौका वो जाया नहीं करते थे कि जिससे मुसलमानों को तकलीफ ना हो। इस वजह से जरूरत थी एक ऐसा खित्ते जमीन हासिल किया जाए जहां पर अंग्रेजों की नहीं इस्लामी हुकूमत की हुक्मरानी हो, कुरान की हुक्मरानी हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल किया जाए। तहरीक शुरू हो गई। आज लोग तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आजादी का तमगा अपने अकाबरीन के सीने पर सजाने की कोशिश करते हैं, तारीख को मस्क करने की कोशिश करते हैं। तारीख इस बात की गवाह है, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला फतवा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया, जैयद आलिम दीन अहले सुन्नत के, इल्म और फजल में अपना सानी नहीं रखते थे, पहला फतवा उन्होंने दिया। अब उसकी एक बहुत तफसील है, लेकिन उससे कता नजर उस फतवे की पादाश में, यानी उसके देने के जुर्म में कि ये हमारे खिलाफ क्यों फतवा दिया, अच्छा और उस फतवे का असर हुआ, लोग अंग्रेजों के खिलाफ हुए। आपने वाजे तौर पर उसमें ये लिखा कि ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, इनसे जिहाद करना लाजमी है, जरूरी है, और दीगर तफसीलात उसके अंदर मौजूद थी। लोगों के जहन तब्दील हुए, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के लिए खड़े हुए। उसकी पादाश में, उस जुर्म में उन्हें काला पानी की सजा दी गई। एक जजीरा था, जजीरा अंडमान, बिल्कुल यानी एक ऐसा इलाका जहां इंसान का रहना नामुमकिन, जहां का पानी भी कड़वा, यानी आदमी खाली पानी पीकर रह जाए तो पानी भी नहीं पी सकता, उसकी सजा उनको दी गई। और कैफियत क्या थी कि जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, अल्लामा फजले हक खैराबादी, ये नाम याद रखिएगा, पहला फतवा उन्होंने दिया, अदालत में पेश किया गया तो गवाह उनको जानता था। उसने ये सोचा कि मैं गवाही तब्दील कर दूं ताकि मौलाना इस सजा से बच जाए। उसने क्या कहा, जज ने पूछा बताओ ये है अल्लामा फजले हक खैराबादी, इन्होंने फतवा दिया है अंग्रेजों के खिलाफ। उसने गौर से देखा, कहा नहीं ये नहीं, मेरे ख्याल से दूसरे फजले हक होंगे उनको बचाने के लिए, और जाहिर है जब गवाह मुनहरिफ हो जाए, गवाही ना हो तो फैसला नहीं होता, और जब गवाह मौजूद हो तो फिर फैसला उसी के खिलाफ होता है जिसके खिलाफ गवाही। कहा नहीं ये नहीं है, मेरे ख्याल से दूसरे फजले हक। अल्लामा फजले खैराबादी सुनते रहे, खामोश रहे। जज ने जब उनसे सवाल किया तो उस मर्द कलंदर ने बगैर किसी खौफ लौमत लाइम के, यानी दिल में कोई खौफ नहीं है मेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा, बगैर किसी उसके, फौरन कहा हां मैंने वो फतवा दिया। और साथ में ये भी फरमाया, ये जो गवाह हैं ये अपनी राय को तब्दील कर रहे हैं, कोई और फजले हक नहीं है, मैं फजले हक हूं, मैंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया, मैंने फतवा दिया है, और मैं बगैर किसी खौफ के इस बात को दोहरा रहा हूं। अब जाहिर है जब जिसके ऊपर वो इल्जाम हो वो खुद इकरार कर ले तो फिर आप जानते हैं कि फैसला क्या होता। और उनकी तो पूरी कोशिश ही यही थी कि अल्लामा साहब को सजा दी जाए, चुनाचे उनको जजीरा एंडोमान भेज दिया गया, काला पानी की सजा हुई। इस सजा के खिलाफ उनके साहबजादे ने अपील दायर की, फिर मुकदमा चला, मुकदमा चलता रहा, फैसला उनके हक में हुआ और जज को फैसला करना पड़ा कि इनको रिहा कर दिया जाए। रिहाई का परवाना मिल गया, अदालत से फैसला हो गया कि अल्लामा फजले खैराबादी को रिहा कर दिया जाए। उनके साहबजादे वो रिहाई का परवाना या जो भी हुक्म जारी हुआ था वो लेकर अदालत का अपने साथ कई उलमा को लेकर चले, सफर करके जब वहां पहुंचे, उस जजीरे में दाखिल हुए तो सामने से एक जनाजा आ रहा। लोगों से पूछा किसका जनाजा है, कहा अल्लामा फजले खैराबादी का जनाजा। उस मर्द कलंदर ने सोबतें, तकलीफें, मुसीबतें सब बर्दाश्त की और वहीं पर ही उन्होंने इंतकाल फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने अंग्रेजों की रिहाई जो अंग्रेजों की तरफ से मिल रही थी उसका धब्बा उनके दामन पर नहीं लगने दिया, पहले ही उनको इस दुनिया से ही रिहा कर दी, पहले ही रिहा हो गए, अल्लाह के बारगाह में पहुंच गए। लेकिन उस मर्द कलंदर ने अपनी जिंदगी का मकसद और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जो उस वक्त जरूरी था बगैर किसी खौफ के दिया, उसका इकरार किया, सजा भी बरदाश्त की और अल्लाह के बारगाह में सुरखुरू हो गए। तो पहला फतवा अल्लामा फजले खैराबादी ने दिया, सिलसिला चलता रहा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीक को संभाला, कायद बने, उलमाए अहले सुन्नत ने उनकी ताईद की। और याद रखिए, अगर उलमाए अहले सुन्नत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की ताईद ना करते और तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लेते, कभी भी यह तहरीक कामयाब नहीं हो सकती थी, कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। अपने तौर पर उलमा ने अपने शागिर्दों को और मशाइख ने अपने मुरीदीन मुतकदीन को इस बात पर रागिब किया, पाकिस्तान का मतलब बताया, पाकिस्तान के हुसूल का मकसद बताया और फिर उनको तहरीक में शामिल होने का हुक्म दिया। पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी से किसी ने पूछा कि आपने इस दाढ़ी मुंडे को अपना इमाम बना लिया, कायदे आजम की दाढ़ी नहीं थी, इसको अपना इमाम बना लिया। कहने का मकसद यह था कि आप सब इसके पीछे चल रहे हैं, यह कायदे, तो आप मुक्तदी हो गए, ये इमाम हो गए। कहा नहीं, हमने मिस्टर जिन्ना को सिर्फ अपनी वकालत के लिए मुकर्रर किया है, अगर इमामत का वक्त आएगा तो जमात अली शाह खुद इमामत कराए। इमाम नहीं बनाए हमने, हमने सिर्फ अपनी वकालत के लिए। और हकीकत यही है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वकालत की है, असल कयादत असल मेहनत उलमा अहले सुन्नत की। सदरुल फाजिल उस्तादुल उलमा अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफी अल जिलानी मुहद्दिस आजम हिंद मुहद्दिस कचौचवी, अल्लामा अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अबुल बरकात सैयद अहमद कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मोहम्मद बख्श मुस्लिम, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी और दीगर जैयद उलमा सब के सब तहरीक में शामिल हो। और अपने अपने तौर पे इन्होंने दौरे किए। 1946 में बनारस, एक हिंदुस्तान में एक शहर है बनारस, वहां पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और उस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में 5 या 6 हजार से जायद उलमा और मशाइख ने शिरकत की। उसका मकसद क्या था? हुसूल पाकिस्तान। पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान के हुसूल का मकसद समझाना, तहरीक पाकिस्तान से अवाम अहले सुन्नत को आगाह करना, यह बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस का मकसद। 5 या 6 हजार से जायद उलमा मशाइख ने उसमें शिरकत की और उस ऑल इंडिया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेर अहले सुन्नत शमशीर बेनियाम मुहद्दिस आजम हिंद अल्लामा सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचौचवी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने फरमाया, अगर कायद आजम मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार हो जाएं तो हम पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अजमेर सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आपने खिताब करते हुए फरमाया, पाकिस्तान कार सुन्निया अस्त, पाकिस्तान तो बनाना सुन्नियों का काम है। फिर आपने फरमाया, पाकिस्तान पाकों का वजीफा है इसीलिए नापाकों को इससे चिढ़ है। मुहद्दिस आजम हिंद ने फरमाया, फरमाया मैंने बार बार पाकिस्तान का नाम लिया है, आप सोचते हैं पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान पाकों का वजीफा है, नापाकों को इससे चिढ़ है। और कौन अपना वजीफा उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते पूरा नहीं करता? यह तो हमारा वजीफा है। और फरमाया, सुन्नियों पाकिस्तान के लिए चलो, चलते रहो, बढ़ो और बढ़ते रहो, पाकिस्तान बना लो तब जाकर दम लो। पाकिस्तान बनाया हमारे बुजुर्गों ने और पाकिस्तान को बचाना है हमें। एक चीज है बनाना और एक चीज है बचाना। सुन्नियों ने बनाया है और इंशाअल्लाह सुन्नी ही बचाएंगे, दूसरे नहीं बचाएंगे। दूसरे तो इसके खिलाफ फतवे देते रहे, दूसरे तो कांग्रेस में शामिल होते रहे। दूसरों से आप समझते मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ फतवे देते रहे, कायदे आजम को काफिर आजम कहते रहे, पाकिस्तान को पलीदिस्तान कहते रहे और जब बन गया तो यहां आकर विराजमान हो गए, असेंबलियों में शामिल हो गए। जी हमने बनाया पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा। गलत है, झूठ है, दजल है, मकर है, फरेब है। पाकिस्तान सुन्नियों ने बनाया है, उलमाए अहले सुन्नत ने बनाया है, मशाइख अहले सुन्नत ने बनाया। तारीख पूरी मौजूद है, आज तारीख को मस्ख किया जा रहा। मोहम्मद बख्श मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सुन्नियों के जैयद आलिम है, जिन लाहौर में मुस्लिम मस्जिद है वहां के खतीब, शोला बयान खतीब। देहाती लोग दूर दराज शहरों से सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए वहां पर आते, मौलाना की तकरीर सुनने के लिए। तो आप उन देहातियों को उन्हीं की जबान में, सादा जबान में हुसूल पाकिस्तान के मकसद से रूपशनास कराते थे, बताते थे, समझाते थे, हम क्यों मुल्क हासिल कर रहे हैं, हमें क्या करना है। हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना चाहते हैं, हम कुरान की बालादस्ती चाहते हैं, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफिज करना चाहते हैं। अल्लामा अबुल हसनात कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अबुल बरकात कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों भाई जैयद आलिम दीन अहले सुन्नत के, जगह जगह, करिया करिया, गांव गांव, जा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, वहां के लोगों को, सादा लौ देहातियों को और पढ़े लिखे लोगों को भी उनके दरमियान तकरीर करते थे, हुसूल पाकिस्तान के मकसद से आगाह करते थे, बताते थे, समझाते थे। इस तरह उलमा अहले सुन्नत ने वहां पर दौरे किए। कुतुब रब्बानी सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे जद्द अमजद, आपका कयाम पहाड़ी इमली दिल्ली में, एक इलाका है पहाड़ी इमली उसका नाम, वहां हजरत का कयाम था। पूरा इलाका मुस्लिम लीग का था। आपने बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मौके पर 1946 में हजरत कुतुब रब्बानी ने अपने मुरीदीन पर एक बयान जारी किया, खिताब फरमाया, और बयान जारी किया, फरमाया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस वक्त का अहम तकाजा थी, जो उलमाए अहले सुन्नत ने इसको महसूस किया और इसका इनेकाद किया। फरमाया हम मुस्लिम लीग की हिमायत करते हैं, हमारे जितने मुरीदीन मोतकदीन मुतवसलीन हैं सबको चाहिए कि मुस्लिम लीग की हिमायत करें और मुस्लिम लीग को वोट दें, हम पाकिस्तान बनाएंगे और इंशाल्लाह बनाकर दम लेंगे। और उस जमाने में आप जानते थे कि अफरा तफरी का आलम था, तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, कहीं खाने की दिक्कत थी, कहीं अनाज नहीं पहुंच रहा था। कुतुब रब्बानी हजरत सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर से लोगों को खाने की चीजें फराहम की, लोगों को अनाज फराहम किया, जो जा रहे थे उनको किराया तक अपने पास से दिया। जब पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग हिजरत करके आए हैं अपने पास से दे रहे हैं। किसी ने पूछा हजरत हमें जरूरत होती है तो हम आपसे ले लेते हैं, और आपको जरूरत पड़ेगी आप किससे मांगेंगे, हम तो आपके पास आ जाते हैं, आप किससे मांगेंगे। फरमाया हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और किसी पर भरोसा नहीं, वही हमारी जरूरियात पूरी कर देते। इस तरह आपने कांग्रेसी मौलवी अहमद सईद उनका नाम था, मौलाना अहमद सईद उन्हें कहा जाता था, चलते हुए पहाड़ी इमली के इलाके में आ गए, और वो हजरत कुतुब रब्बानी का इलाका था। मस्जिद में हजरत तशरीफ फरमा थे, उन्होंने हजरत को देखा नहीं, आप उस किबले की जानिब मुंह करके बैठे और आदो वजाइफ में मशगूल थे। मौलाना अहमद सईद आए, लोगों को जमा किया और कांग्रेस के हक में दलाइल देने शुरू कर दी, देखो पाकिस्तान बनना सही नहीं है, ये है गलत है, ये कायदे आजम गलत है, और ये फला गलत है, और ये मुस्लिम लीग गलत है, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेसी मौलवी। हजरत ने जैसे ही सुना फौरन आपने पीठ मोड़कर इधर देखा, फरमाया मौलाना क्या कर रहे हो, इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हो, कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबरदार ये इलाका मुस्लिम लीग का है, हमने पाकिस्तान बनाना है और बनाकर दम लेंगे, खबरदार तुम यहां आइंदा तुमने ऐसी हरकत की, निकल जाओ फौरन। हजरत की पुरजलाल शख्सियत और पुरजलाल बारौब आवाज सुनकर मौलाना वहां से भागते हुए नजर आए, दोबारा फिर कदम नहीं रख। कहने का मकसद यह है कि हर एक ने, उलमा मशाइख ने, हर एक ने अपने अपने तौर पर जहां जहां उनका हल्का अहबाब था पाकिस्तान के लिए राह हमवार की है, कुर्बानियां दी हैं। खुद हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई जिनका नाम था सैयद सुल्तान अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह, दिल्ली में एडवोकेट थे और मुसलमानों की तरफ से बगैर किसी पैसे के फ्री मुकदमे लड़ते, मुसलमानों पर जो मुकदमात कायम होते थे उन पर जुल्म सितम होते थे, अब बगैर किसी फीस के मुकदमे लड़ते थे और मुसलमानों को रिहा कराते थे। उनकी शख्सियत भी हिंदुओं की नजरों में खटक रही थी, ये एक वाहिद मुसलमान है, ये काबिल है, ये एडुकेट है कि मुसलमानों की तरफ से लड़ता है, पीछे लगे रहे लगे रहे। 9 मुहर्रम उल हराम को अपने ऑफिस में जब वो जाने लगे, 4-5 हिंदू हाथ में तलवारें और छोटा सा जो चाकू जो सिख रखते हैं अपने पास वो, और बहुत सारी चीजें ऐसी और डंडे वो लेकर आए और उनको घेर लिया, और चारों तरफ से उस अकेले इंसान पर, यानी एक आदमी अकेला हो और चारों तरफ से अगर सिर्फ डंडे भी बरसाए जाएं तो जाहिर है आदमी की मौत वाकई हो जाए, जबकि उनके हाथ में तलवारें भी थीं, चाकू भी थे और दीगर चीजें थी, उन पर हमला किया, वो सिर्फ अपने हाथों से रोकते रहे यहां तक कि उनकी उंगलियां भी कट गई। फिर एक ने छुरा या चाकू उनके पेट में घोपा, दूसरे ने इस तरफ से घोपा, आप गिर गए और उसी में आपकी शहादत हो गई। उन्होंने आपकी जेब से सारे पैसे भी निकाल लिए और लाश को वहीं पड़ा छोड़कर चले गए। 9 मुहर्रमुल हराम को आपको शहीद किया गया और उस वक्त जबकि घर से निकलना नामुमकिन था, उस वक्त उनकी लाश, उनका जसद मुबारक पहाड़ी इमरी पर लाया गया और जब देखा तो हाथों की उंगलियां भी कटी हुई थी, चेहरे पर, जिस्म पर, पूरा जिस्म जख्मी था और जख्मों से चूर चूर था। कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था कि जहां पर चाकू के या तलवार के निशान ना हो। पेट काट दिया गया था। अजीब कैफियत थी। हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सगे भाई जिनसे बहुत मोहब्बत करते थे उनकी लाश को देखा और फरमाया, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वला किल्ला तशुरून। और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सब्र और जब्त को अपने हाथ से नहीं जाने दी। कुर्बानियां दी हैं उलमा ने, मशाइख ने, अवामे अहले सुन्नत ने, तब जाके पाकिस्तान मारिज वजूद में आया। ऐसा नहीं है। आजादी की कदर वही जानते हैं जो गुलामी में रह चुके हों। आजादी की कदर वही जानते हैं जो गुलामी में रह चुके हों। आज लोग बात करते हैं ना, क्या है इस मुल्क में, कुछ नहीं है, यहां पर महंगाई है, यहां पे ये डाके डल रहे हैं, यहां पे ये कत्ले आम हो रहा है, यहां फला हो रहा है, ये मुल्क में सारी बुराई है। पाकिस्तान को जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हो, जिस मुल्क में रह रहे हो उसी के खिलाफ बात कर रहे हो। हम कहते हैं उन गद्दारों से जो इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में महंगाई है, अगर पाकिस्तान में कत्लो गारत गरी है, अगर पाकिस्तान में सारी बुराइयां हैं, छोड़ दो पाकिस्तान को, चले जाओ उस जगह जहां ये कुछ नहीं है। सही बात है, आप छोड़ दें इस मुल्क को, छोड़ेंगे भी नहीं, रहते भी यही हैं। अरे कहीं जाकर मरोगे तो बॉडी फिर यहीं पर आएगी, फिर यहीं पर आएगी। तो जो इस किस्म की बात करता है हम समझते हैं वो गद्दार है, पाकिस्तान है, वफादार कभी नहीं हो सकता। अपने मुल्क की बुराई, अपने घर की बुराई कोई करता है? अपने रिश्तेदारों की बुराई कोई करता है? अपने अहल वयाल की बुराई कोई करता है? कैसे लोग हैं? पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में तालीम हासिल की और तालीम हासिल करके जब बाहर चले गए, किसी ओहदे पर पहुंच गए, इसी मुल्क की बुराई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुका हूं, बहुत से लोगों को देखा, बुराई करे जी वहां तो कुछ नहीं है, वहां तो महंगाई है, वहां तो रहने के लिए कुछ नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में, फ्यूचर इंग्लैंड में है, फ्यूचर हॉलैंड में है, फ्यूचर यूरोप में है। देखो मैं यहां पर वेल स्टैब्लिश हूं। अच्छा वेल स्टैब्लिश है? हमने कहा एक बात बताइए, पैदा कहां हुए? कहने पाकिस्तान में। तालीम कहां हासिल की? पाकिस्तान में। उसी तालीम की वजह से यहां पर आए? हां। और उसी मुल्क को बुरा कह रहे हो? जिस धरती पर तुमने जन्म लिया है, जिसने तुम्हें चलना फिरना सिखाया, जिस मुल्क में तुमने शऊर हासिल किया, जिस मुल्क में तुमने तालीम हासिल की, जिस मुल्क ने तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज दी, और जब तालीम हासिल करके किसी ओहदे पर पहुंच गए और किसी दीगर ममालिक में कहीं पहुंच गए किसी ओहदे पर, उसी मुल्क की बुराई कर रहे हैं। अब मरोगे तो लाश कहां जाएगी? पाकिस्तान। जब अव्वल में पाकिस्तान है तो आखिर में भी पाकिस्तान। हम पूरे वसूक के साथ ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हरमैन तैयबैन के बाद अगर सबसे बेहतर मुल्क है तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है और कोई नहीं। जिंदाबाद। तो ये सब गद्दारे पाकिस्तान हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। कहते पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? आप देखिए दुनिया में कितने ममालिक हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, जैसे अफगानिस्तान। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पहाड़ नहीं है, सिर्फ प्लेन जमीन है, जैसे रूस। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां समंदर ही नहीं है, रूस। बंदरगाह ही नहीं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां सिर्फ समंदर है, दरिया नहीं। कहीं दरिया है, समंदर नहीं है ना। कहीं सिर्फ रेगिस्तान ही है। पूरी दुनिया का जायजा ले, कहीं सिर्फ रेगिस्तान है, कहीं सिर्फ पहाड़ है, कहीं सिर्फ प्लेन जमीन है, वो पहाड़ों को देखने को तरसते। कहीं समंदर नहीं है, वो समंदर को देखने को तरसते। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। यहां समंदर भी है, यहां दरिया भी है, यहां नहरें भी हैं, यहां पहाड़ भी हैं, यहां प्लेन जमीन भी है, यहां बागात भी हैं, यहां चश्मे भी हैं और यहां आबशार भी हैं। सारी रहमतें तो यहीं, सारी रहमतें तो यहीं हैं। कहते पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हमने कहा बताओ पाकिस्तान ने क्या नहीं दिया, पाकिस्तान ने क्या नहीं दिया, तुमने अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया। फबियाला रब कमा तो कज़बान, पाकिस्तान में घूमो फिरो देखो, यहां के चीजों का मुशाहिदा करो। अंग्रेज यहां पर आकर देखते हैं, सवात की तरफ निकल जाओ, वादी नीलम की तरफ निकल जाओ, सैफुल मुलुक की तरफ निकल जाओ, एक से एक मंजर नजर आएगा जो यूरोप में भी नजर नहीं आता। पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों का खजाना है, पाकिस्तान अल्लाह की रहमतों का खजाना है। पूरी दुनिया में आप देख लें, सबसे बेहतर उलमा पाकिस्तान में, मशाइख पाकिस्तान में, नात खां पूरी दुनिया में बेहतर पाकिस्तान में, डॉक्टर पाकिस्तान में, इंजीनियर पाकिस्तान में, क्या है जो पाकिस्तान में नहीं है, कहीं भी चले जाओ। इसीलिए यहूद और नसारा की नजरें इसी मुल्क पर लगी हुई। इस्लामी जमहूरिया सिर्फ दो मुल्कों के साथ लिखा है और किसी के साथ नहीं, ईरान के साथ और पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब जहां पर हरमैन तैयबैन है जो मरकज समझा जाता है, वो भी सिर्फ सऊदी अरब ही नाम है, इस्लामी जमहूरिया उन्होंने भी नहीं लिखा। पाकिस्तान को फखर हासिल है, लिखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लाम का कला है, पाकिस्तान मर्दम खेज खित्ता है, यहां से ऐसी हस्तियां पैदा हुई जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसीलिए उनकी नजरें इस पर लगी हुई। यहां पर जिस तरीके से हम जिंदगी गुजारते हैं, अपने मजहबी तकरीबात, शायर, इन तमाम चीजों को अंजाम देते हैं, और कहीं आप नहीं कर सकते। इसीलिए आप सिर्फ रमजानुल मुबारक में अगर आप देख लें, हरमैन तैयबैन के बाद अगर मजा आएगा तो रमजान में पाकिस्तान में, और कहीं नहीं आएगा। किन किन नेमतों का हम जिक्र करें, खुदा रा इस मुल्क की कदर कीजिए, और इस मुल्क ने जो आपको दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है, पाकिस्तान में जिंदा रहना चाहते हैं, और हमारी हर मुसलमान की तरजीह यही है और ख्वाहिश यही है कि उसका मदफन बकी हो, जन्नतुल बकी हो, हमारा भी यही है, और उसके बाद अगर हो तो पाकिस्तान, और किसी मुल्क में मरना नहीं चाहते, अपने मुल्क में। कहने का मकसद यह है कि यह मुल्क कुर्बानियों से हासिल किया गया, लाखों जानों की कुर्बानियां दी, तब जाके ये मुल्क हासिल हुआ। उलमा और मशाइख ने अपने अपने तौर पर फरीजा अंजाम दिया, मुख्तलिफ इलाकों में, देहातों में, शहरों में, सब जगह वो गए, उन्होंने दौरे किए, हुसूल पाकिस्तान की मंजिल को करीब किया। 1946 में जो बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई, उसने कयाम पाकिस्तान की मंजिल को और करीब कर दिया, और ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है। अगर उलमाए अहले सुन्नत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का साथ न देते, कभी भी पाकिस्तान मारिज वजूद में नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। उलमा ने साथ दिया, मशाइखीन ने साथ दिया, उलमा अपने मदारिस से और मशाइख अपनी खानकाओं से बाहर निकले और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। एक बड़ी फेरिस हमारे पास मौजूद है जो तारीख का एक हिस्सा है, मशाइखीन में आला हजरत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी, पीर साहब मानकी शरीफ, पीर साहब जकोड़ी शरीफ, पीर साहब तोनसा शरीफ, पीर साहब सयाल शरीफ, शरखपुर शरीफ, कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी, और इसके अलावा दीगर पीर साहब भरचोंडी शरीफ, जितने भी थे उस वक्त मशाइखीन, इन सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेलौस खिदमत की है। आप जानते हैं कि हर एक का हल्का अहबाब, हर एक के मुरीदीन मुतकिदीन, जिसका जहां तक हल्का था वो वहां तक पहुंचा है और अपने मुरीदीन को पाकिस्तान के हुसूल के लिए तैयार किया, तहरीकें चलाई हैं बाकायदा। अपना घर बार छोड़कर, अपने मदारी छोड़कर, अपनी खानकाएं छोड़कर निकले हैं और फिर जाकर तहरीके पाकिस्तान के लिए काम किया, तब जाकर ये खित्ते जमीन वजूद में आया। और अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए, जब ये पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया, इस पाकिस्तान का ऐलान हुआ, रमजानुल मुबारक की 27वीं शब थी, शब कदर, नुजूल कुरान की शब, रहमतों की शब, बरकतों के नाजिल होने की शब। गोया खालिके कायनात ने तारीख से ही बता दिया कि देखो मैं ये खित्ते जमीन इस मुबारक रात में, नुजूल कुरान की रात में तुम्हें दे रहा हूं, इसीलिए मेरे कुरान का हुक्म और मेरे कुरान की हुक्मरानी इस मुल्क में नाफिज होनी चाहिए। इस मुल्क में इस्लाम की हुक्मरानी होनी चाहिए थी। और आप देखें, इस मुल्क का सदर वजीर आजम जब हलफ उठाता है, यही इकरार करता, यही इकरार करता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर समझकर यह कहता हूं कि इस मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वफादार रहूं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करूं। और इस मुल्क के आईन में मुसलमान की तारीफ जो शामिल है वो भी उलमाए अहले सुन्नत का कारनामा, किसी और ने नहीं की है। कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसको लिखा और पाकिस्तान के आईन में शामिल किया। पाकिस्तान का सदर वो होगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, और खास कर ये लफ्ज शामिल किया गया, ये अल्फाज शामिल किए गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत पर यकीन रखता हो, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा इस बात पर यकीन रखता होगा, वो सदर बनेगा पाकिस्तान का या वजीर आजम बनेगा। इसलिए शामिल ये तारीफ की गई ताकि किसी कादियानी को सदर या वजीर आजम बनने की हिम्मत ना हो। कादियानी यही कहते हैं ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हुजूर फिर भी खातमन नबीयीन है, बाद में भी कोई आ सकता है। उलमा ने इसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो हमारा आईन इस बात की दलील है, कानून इस बात की दलील है कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कुरान की हुक्मरानी, बस कोई कानून नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो निजामे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही चले। बदकिस्मती से गुज़िश्ता अदवार में कुछ ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत चली गई कि जिन्होंने हमें इस मंजिल से दूर कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी नहीं है, जिस साथ में ये मुल्क कायम हुआ, जिन बुजुर्गों की दुआओं से कायम हुआ, जिनकी कुर्बानियों से कायम हुआ, जिन मुसलमानों का लहू इस मुल्क की बुनियाद में शामिल है, ये सब इस बात की दलील है कि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह कायम रहे। और इंशाल्लाह ताला इसमें इस्लामी निजाम नाफिज होगा और मकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ्फुज होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, इस्लाम का कला है और इंशाअल्लाह ताला बाकी रहेगा। अब आखिरी बात क्या कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमने ये सब कुछ सुन लिया और हम सुनते रहते हैं बुजुर्गों से, बुजुर्गों ने इसको कायम किया, इतनी कुर्बानियां हुई, इतनी मुसीबतें हुई, इतनी परेशानियां हुई, ये सारी चीजें हुई, अब मुल्क वजूद में आ गया। लेकिन ये भी एकदम नहीं आए हैं, इसका एक पस मंजर है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है, तब जाके ये मुल्क मारिज़े वजूद में आया। अब हमें क्या करना है, हमें इस मुल्क से मोहब्बत करनी, हमें इस मुल्क की बुराइयों को मिटाना है और अच्छाइयों को फैलाना है, हमें इस मुल्क की तामीर करनी है, हमें इस मुल्क की तरक्की देनी है, हमें अपनी न्यू जनरेशन जो नई नस्ल है उसको बताना है कि देखो ये मुल्क है तो हम हैं और मुल्क नहीं है तो हम कुछ नहीं। इसलिए कि ये मुल्क हमारी शिनाख्त है, पाकिस्तान हमारी पहचान है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कहीं देखो ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कहलाएंगे ना। आपके किसी अमल से पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएं, किसी अमल से ऐसा जाहिर ना हो कि जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। इस बात को खास तौर पर याद रखिए। पाकिस्तानी जाकर बहुत सी ऐसी हरकतें कर देते हैं कि मुल्क की बदनामी हो। करता एक है, बदनाम सारे होते हैं, सारे पाकिस्तानी ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वो काम करें कि हमारे मुल्क का नाम हो, सरबुलंदी हो, इज्जत हो, वकार हो। और वो इसी सूरत में हो सकता है जब हम इस मुल्क से मोहब्बत करेंगे। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, इस मुल्क ने हमें तालीम दी, हमें शऊर दिया, हमें इज्जत दी, हमें वकार दिया, हमें मजहबी तकरीबात सही तौर पर अदा करने का तरीका दिया, सारी चीजें दी। जहां तक ये ताल्लुक है कि अमन अमान, कत्ल गारत करी, डाकाजनी, चोरी, बदमाशी, अय्यारी, मकारी, ये सारी चीजें साजिशों के तहत की जाती। इस मुल्क को बदनाम करने के लिए ये चीजें पैदा की जाती हैं। देखो पाकिस्तान में ये हो गया, देखो पाकिस्तान में ये हो गया, क्या और पूरी दुनिया में कहीं चोरी नहीं हो रही, कहीं डाके नहीं डल रहे, कहीं कत्लेआम नहीं हो रहा? यूरोप में जाके देखो सब कुछ हो रहा है, वो छुपाते हैं, कहीं कुछ हो गया छुपाते हैं, हमारे जाहिर कर, पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ। हम ये कहते हैं पूरी दुनिया का अगर आप जायजा लें, सारी दुनिया में सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान से बढ़कर हो रहा, और यहां जो कुछ हो रहा है वो साजिशों की वजह से हो रहा। बोले वाले लोगों को वरगलाने के लिए, पाकिस्तान का मुखालिफ करने के लिए कि पाकिस्तान में ये है, अमन अमान नहीं है, फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, मुस्तकबिल नहीं। हम बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं वहां कुछ नहीं है, वहां जिंदगी नहीं है। मैंने कहा वहां जो लोग रह रहे हैं वो क्या भूखे मर रहे हैं? वहां जो लोग रह रहे हैं क्या वो सारे जाहिल है? तालीम नहीं मिल रही उनको, उनको खुराक नहीं मिल रही, उनको तहजीब तमद्दुन नहीं है? अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर अपने मुल्कों में यहां के बेहतरीन नातखाओं को क्यों बुलाते हो? अगर ये कुछ नहीं है तो यहां के उलमा को वहां क्यों बुलाया जाता? अगर ये नहीं है तो यहां के मशाइख को क्यों बुलाया जाता? पता चला ये मर्दम खेज खित्ता है, जिस शोबे में देखो वहीं पर आदमी ने टॉप किया। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं। इस्लाम का जिस तरह सही तौर पर यहां नाम लिया जाता है, इस्लामी तालीमात, और उस पर यहां पर अमल किया जाता है, इस्लामी तकरीबात, पूरी दुनिया में कहीं इस तरह नहीं होता। तो खुदारा इस मुल्क से मोहब्बत कीजिए, इसकी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश कीजिए। हम में से हर शख्स अपने ऊपर यह लाजिम करे कि मैं बुराइयों को खत्म करूंगा, मिटाऊंगा, अच्छाइयों को फैलाऊंगा, नेकियों को। कुरान ने कहा वताअवनु अलल बिर्र वत्तक्वा वला ताअवनु अलल इस्म वलउदवान। बुराइयों के कामों में ताबुन ना करो, नेकी के कामों में ताबुन करो, एक दूसरे से मदद करो। जब हम इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मुल्क पाकिस्तान अमन व अमान का गहवारा बनेगा, और ये मुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से बना। एक साहब, एक बुजुर्ग पीर साहब कहें या बुजुर्ग, पाकिस्तान के हक में नहीं थे जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी। एक दिन के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं तहरीक पाकिस्तान के हक में हूं। लोगों ने कहा ये क्या हुआ, आप तो मुखालफत कर रहे थे, आप तो मुखालफत कर रहे थे कि मुल्क बनना नहीं चाहिए, ये है, ये मसला है, ये परेशानी है, क्या जरूरत है पाकिस्तान बनाने की, अब ये एकदम चेंज कैसे आ गया? कहा जब मैं रात को सोया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत हुई, सरकार ने फरमाया ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बन रहा है, तुम्हें ताईद करनी। मैं जब ही से मैं इसकी ताईद कर रहा, हुजूर का हुक्म हो गया, मैंने ताईद कर। और ये बनने के बाद जब 1965 में इंडिया ने चोरों की तरह रात को छुपकर शबखून मारा, उस वक्त भी बुजुर्गान दीन ने इस मुल्क की मदद की। नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम रही, 17 दिन जंग रही और मुसलमान फाते बने। वो छुपकर शबखून मारने वाले, रात को हमला करने वाले, इंडिया ने कह दिया था हम लाहौर के होटल में बैठकर शराब पियेंगे, ये तो सो रहे हैं, हमला करेंगे, लाहौर तो हमारे कब्जे में आ ही गया, बाकी चीजों पर भी कब्जा कर लेंगे। वाघा की तरफ से वो घुसे, सियालकोट की तरफ से टैंकों की जंग हुई, तीन तरफ से इंडिया ने चोरों की तरह रात को हमला किया, शब खून मारा। किसी ने देखा, इंडिया वालों ने बयान दिया उनके पायलट ने कि हम ऊपर से बम गिराते हैं, कोई सब्ज रंग का मामा बांधे खड़ा है वो हाथ मार के रावी में फेंक देता, दरिया रावी में फेंक देता। और जब बुजुर्गाने दीन से पूछा, उन्होंने कहा वो हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह लाहौर की हिफाजत फरमा। तो जो लोग पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से बना है, बुजुर्गाने दीन की दुआओं से, मुसलमानों की कुर्बानियों से बना है। और जो बुजुर्गाने दीन यहां आराम फरमा है वो सब इसके मुहाफिज है, इंशाअल्लाह मुल्क कायम रहेगा, कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह कायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आइए हम दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हमेशा हमेशा कायम दायम रखे। मौला इसके मिटाने वालों को मिटा दे, मौला इसके खत्म करने वालों को खत्म कर दे, मौला इसमें बसने वालों की इज्जत और मान और उनकी जानों की हिफाजत फरमा, मौला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा। ए इलाहुल आलमीन इस मुल्क को यहूद और नसारा की बद नजरों से महफूज फरमा, साजिशों से महफूज फरमा, दुश्मनों से महफूज फरमा, हासिदों से महफूज फरमा। ए इलाहुल आलमीन अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाह करम हमें चाहिए, उनकी एक निगाह करम इन सब बद निगाहों को दूर कर दे। और हमें उम्मीद है, यकीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम इस मुल्क को हासिल है, बुजुर्गान दीन की निगाह करम उनके रूहानी तसरुफात हासिल है, इंशाअल्लाह मुल्क कायम रहने के लिए बना है, कायम रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला इसमें सही इस्लामी हुकूमत और सही इस्लामी हुक्मरान हमें अता फरमा, निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज हो और मकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ्फुज। ऐ इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।